ओम शांति। मुरली को रिवाइज करना या मुरली केवल हम इस लक्ष्य से नहीं पढ़ते हैं कि कोई पूछे तो हम बता दें हमको याद है, है ना। हम कोई पूछे और हमको याद ना हो, है ना। लेकिन वास्तव में बाबा ने जो विधि बताई है कि जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली को क्या करें, रियलाइज करते जाएं, हाँ, अनुभव करते जाएं। तो इसीलिए देखते हैं हम सभी कि आजकल की दुनिया में भी छोटी छोटी चीजें भी हम भूल जाते हैं ना, छोटे छोटे सामान भी कहीं रखते हैं भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम रखते हैं लेकिन उसको देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कोई काम कैसे करो, छोटा भी कार्य कैसे करो, ध्यान से, है ना। तो अगर देखते हैं कोई भी चीज आप देखते हुए रखते हैं तो भूलेंगे नहीं। यदि आप भूल भी गए ना वो चीज तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैं ऐसे रख रहा था, यहां रखा था। तो इसीलिए रख भी रहे तो भले आपको पता है यहां टेबल ऐसे रख दिया, नहीं, उसको देखते हुए रखें, देखते हुए अलमारी में रखें, अलमारी में भी रख रहे तो रखते हुए देखते हुए। तो आप भूल भी जाएंगे तो ये जो सीन है ना आपकी आंखों के आगे, ये नहीं भूलेगा, ये याद रहेगा। तो इसलिए जब भी कुछ ऐसा करते हैं, कोई सामान रखते हैं, वस्तु रखते हैं, तो देखते हुए। इसीलिए बच्चों को भी कहते हैं ध्यान से करना, ध्यान से जाना, मतलब देखते हुए। तो ऐसे ही जब हम मुरली भी सुनते हैं ना तो मुरली को भी देखें, इसीलिए कहते हैं रियलाइज, है ना। इसे भी देखना है लेकिन किससे देखना है, रियलाइज, असली आंख जो है कौन सी, बुद्धि, है ना। तो बुद्धि से देखते जाए, जब भी मुरली सुनते उसे बुद्धि से देखें, है ना। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि बच्चे भी क्या कहते हैं, ओम शांति, और बाबा भी क्या कहते हैं, ओम शांति, है ना। लेकिन शांति कहाँ है, बाबा ने क्या बताया, तो बाबा ने कहा कि परम धाम है ना, परम धाम ऐसा स्थान है जहां संपूर्ण शांति है। इसीलिए बाबा ने कहा कि वहां आप बच्चे भी शांत रहते हैं, है ना। तो जब बाबा ने ये कहा कि आप बच्चे भी वहां शांत रहते हैं परम धाम में, तो केवल एक पॉइंट नहीं है। जब हम केवल पॉइंट की रीति से देखते हैं ना, ये पॉइंट निकल जाएगी, हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये बहुत गुह्य पॉइंट है ना, कितना विशेष है, कितना खास है ये। इसीलिए कई बार बाबा मुरली में कहते हैं, एक मुरली में बाबा ने कहा कि आपको बैठना भी नहीं आता क्या, मेरे पास आओ परम धाम में और बिंदु बनकर बैठ जाओ, कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं कम से कम आकर बैठ जाओ। तो ऐसे बाबा ने कहा कि जो परम धाम में शांति है, तो एक सेकंड के लिए जब हम मुरली भी सुन रहे ना तो इसको बुद्धि के द्वारा हम देखें परम धाम को, है ना, निकलना जाए। जब परम धाम हमने सुना उसी समय बुद्धि से देखा, अभी परम धाम कैसा है उसे फील करें। तो मुरली के बाद भी इस पॉइंट को रिपीट करना, अर्थात फिर से इसको अनुभव करना, रियलाइज करना, परम धाम में चले जाना कि बाबा ने कहा वहां शांति है। तो ऐसे इसको हम रियलाइज करें, ऐसे इसको हम अनुभव करें, जैसे बाबा ने आज कहा। इसीलिए इससे कनेक्टेड था कि अतीन्द्रिय सुख की भी अनुभूति कब होगी, कब होगी, जब शांत स्वरूप स्थिति में रहेंगे। तो शांत स्वरूप स्थिति अर्थात कैसे शांत होंगे? अगर शांत होना है तो कैसे? बोलना बंद कर दें, कोई आवाज ना हो, कोई दो तीन बात कर रहे हो तो हम उनको बोले कि चुप हो जाओ, है ना? ऐसे ही शांत रहेंगे ना, आसपास सबको शांत करेंगे। ये विधि है, सही विधि है सबको शांत कराना। बाहर कितना भी आवाज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम शांत रह सकते हैं। कैसे? जो ही हमने स्वयं को आत्मा समझा, आत्मा समझते ही, तो आत्मा भी हम जब कहते हैं ना आत्मा, तो वास्तव में उसको रियलाइज करना, बिंदु दिखाई दे सामने, चमकती हुई बिंदु, और ये मैं हूं। तो जो ही मैं बिंदु हूं, मैं आत्मा हूं, जो ही जब बिंदु रूप में देखते हैं ना, अब देखो तुरंत फील होगा, तुरंत शांति आ जाएगी। केवल कहने से नहीं, हमने पॉइंट पढ़ लिया, हाँ इससे शांति तो हो जाती है, लेकिन नहीं, साथ ही अनुभव करना है। क्योंकि जो इंद्रियों का सुख है ना, वही हमको इस आत्मिक स्थिति से दूर ले जाता है, शांत स्वरूप स्थिति है, इससे दूर ले जाता है। कोई चीज हमको देखने में बहुत अच्छी लगी ना, हम आत्मा से दूर चले गए। कोई सुनने में बहुत अच्छा लगा, आत्मा से दूर। तो अगर हमको इसकी फीलिंग करनी है, आत्मा की अनुभूति करनी है, तो ये बाहर की चीजों को छोड़ना होगा। जैसे गीत सुनते हुए हम योग करते हैं, तो ये भी एक सेमी योग है। योग अर्थात जहां कोई आवाज भी न सुनाई दे, सबसे परे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब आप आत्मा समझेंगे ना, तो आत्मा समझते ही आत्मा देखेंगे, बुद्धि से देखिए सामने, केवल कहना नहीं। तो जब देखेंगे आत्मा को तो शांत हो गया, और यही अतीन्द्रिय सुख है। ये जो सुख है ना, इसको कहेंगे, क्योंकि ये सुख जो है इंद्रियों पर आधारित नहीं है। और जो भी सुख है, देखना, सुनना, बोलना, ये सब इंद्रियों पर आधारित है। और जो इंद्रियों का सुख है, वो दिन पर दिन कम होता जाएगा और छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। जैसे किसी को बहुत मीठा खाने की आदत है, बहुत अच्छा खाते हैं मीठा, तो जितना जितना उम्र बढ़ती जाएगी ना, डॉक्टर्स भी क्या कहेंगे, अभी आप अपना मीठा थोड़ा, लास्ट ऐसी भी सिचुएशन आएगी, क्या कहेंगे, छोड़ दो, है ना? अब ज्यादा टीवी नहीं देखो, आंखों पे असर पड़ता है। तो हर जगह एक, तो जितना एज ज्यादा होती जाएगी ना, इनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है ना, ये बढ़ता जाएगा। इस पर किसी का इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओ, है ना? तो एक तो हम अपने को आत्मा देखें यहां, तो हम शांति की फीलिंग करने लगे, अनुभव करने लगे। दूसरा, हम परम धाम में भी देखें अपने को। बाबा ने कहा ना, मैं भी वहां हूं और आप भी वहां हो, तो शांति है। इसीलिए बाबा ने कई मूल्यों में कहा है कि जब आप एक बिंदु देखते हो ना, तो योग टूटता है। जब दो बिंदु देखेंगे ना, कभी योग नहीं टूटेगा। एक बाबा और एक मैं, मां, दो बिंदु, है ना? तो ऐसे परम धाम में अपने को स्थित करना है, और इस शांति को हमें फील करना है, अनुभव करना है। और इसीलिए बाबा ने आज कहा, कितनी अच्छी बात कहा ना, इससे कनेक्टेड ही है, नहीं तो इसको अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि जो व्यर्थ है, कोई भी व्यर्थ बात है, उसको समर्थ में बदलना है, तो उसकी विधि क्या बताई बाबा ने, व्यर्थ को अगर समर्थ में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? शुभ भावना से, है ना, जो होली है बाबा ने कहा ना। तो जितना हमारी गुड विशेष होगी ना, जितनी शुभ भावना होगी, तो कितनी भी व्यर्थ बात है वो बदल जाएगी। और इसी शुभ भावना को ही कहते हैं, शुभ भावना शुभकामना है, इसी को कहते हैं वास्तव में दुआएं देना और दुआएं लेना, इसी में समाया हुआ है। और इसीलिए कहते हैं कि इसी में चारों सब्जेक्ट हैं, दुआएं देना और दुआएं लेना। बाबा ने कहा इसी में ज्ञान भी है, आज नहीं पहले मुरलियों में कहा है बाबा ने, इसी में ज्ञान भी है, इसी में योग भी है, इसी में धारणा भी है, इसी में सेवा है, चारों सब्जेक्ट इसमें समाये हुए। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब आप शुभ भावना रखते हो ना, तो शुभ भावना से उल्टी बात भी क्या हो जाती है, कितनी बड़ी बात है आज के मूल्य में, तो बिल्कुल आंख खोल देने वाली है ना, कि ये शुभ भावना जो है आपकी उल्टी बात को भी सुल्टी कर देती है। हम चाहते हैं किसी को समझा के हम बदल दें, आप केवल गुड विशेष रखो। तो बाबा ने कहा इससे क्या होता है, पत्थर भी क्या हो जाता है, पानी हो जाता है, पत्थर भी पानी हो जाता है। तो किसी भी आत्मा को बदलना है तो इससे हम बदल सकते हैं, शुभ भावना से, गुड विशेष से, है ना। तो बाबा ने कहा है ना कि जैसे हर एक का है दुनिया में भी, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो स्वरूप है, उससे आप अलग जाकर के कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है, दुनिया में भी बहुत बातें फैलने लगती हैं। वातावरण बिल्कुल, जैसे मान लो कोई महात्मा हो और वो महात्मा अगर पूजा पाठ करता है मंदिर में, आपको पता है हाँ ये 3:30 बजे उठ जाते हैं फिर पूजा पाठ करते हैं, और उनको आप दिन में देखते हैं कि कहीं थिएटर के पास खड़े हैं, तो क्या कहेंगे, ये महात्मा है। तो उनके कारण कितने महात्माओं का भी क्या हो जाता है, एक करता है लेकिन सभी महात्मा उनके कारण। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब अगर हम जैसे सिंपल है, मान लीजिए हमारे पास बैज नहीं है, हमारा ये ड्रेस नहीं है, सिंपल, कोई जानता नहीं, सिंपल है बिल्कुल, तो हम कुछ भी करेंगे तो किसी का संकल्प नहीं चलेगा, सोचते हैं हाँ ये तो नॉर्मल है, आजकल दुनिया ही ऐसी है। लेकिन यदि हमको बैज लगा हुआ, हमारा सफेद ड्रेस है और हमारे बोलने का ढंग नहीं है, बातचीत करने का मैनर्स नहीं है, किसी के इंसल्ट कर देते हैं, कहीं उल्टे स्थान पर हैं, तो ये किसकी बदनामी होती है, केवल मेरी नहीं, आज बाबा ने कहा ना, किसकी बदनामी होती है, बाप का नाम बदनाम होता है। यदि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, स्वरूप के एंटी चल रहे हैं, जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि कोई लीडर थी, उसने जैसे प्रवक्ता है तो उनको कुछ बात रखनी है, कोई विचार, तो उन्होंने पूरा विचार रखा अपना, तो उससे भी ज्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन बात इतनी गड़बड़ नहीं होती है, लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा बोला तो उसकी पार्टी का ये मत माना गया कि हाँ इनकी। तो इसीलिए जब हम इस स्वरूप में है ना, हम भी जब कुछ बोलेंगे ना तो ये माना जाएगा कि हाँ ब्रह्मा कुमारी जी में ऐसे बताते हैं, ब्रह्मा कुमारी जी में ये बोलते हैं। तो जस्ट हमारे एक एक आचरण पर, जैसे बाप की भी इज्जत है ना, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हम भी कुछ उल्टा सुल्टा करते हैं या छोटी सी भूल करते हैं तो इस पर भी, इससे भी बाबा का नाम हम है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना कि आप धंधा दौरी या जो कार्य व्यवहार है इसमें भी बाबा से श्रीमत लो, है ना। और इसीलिए बाबा ने आज ही की मुरली में कहा कि श्रीमत लेने से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। बाबा ने कहा कि श्रीमत लेकर जब कोई कार्य करते हैं तो उसका उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी हो जाती है, बाबा की, है ना। तो इसीलिए हम एक बार क्लियर करें, कोई भी बात है कि मुरली में भी है, ये बात मुरली में है, ये बाबा ने कहा है, और मुरली में भी बाबा ने कहा है तो किस बेसिस में, किसके कारण, केवल शब्दों को भी नहीं पकड़ना है। इसीलिए बाबा कहते हैं शब्दों को नहीं भाव को देखो, भाव को समझो, है ना। तो इतना हमारा ध्यान हो तो ऐसे लगेगा कि हम कितना ध्यान दें, क्या क्या करें, हमारी एक्टिविटी कैसी हो, आंखों के लिए ये करें, कानों के लिए ये करें। सबके लिए अलग अलग करने की कुछ जरूरत नहीं है, इतना मेहनत नहीं है, है ना। जैसे कहते हैं ना, मान लो कोई मटका है और मटके में आपने मीठा पानी भर दिया, मीठा है, तो मान लीजिए साइड में अगर नलका जैसा लगा है वहां से भी खोलेंगे तो कैसा पानी आएगा, मीठा। अगर ऊपर से भी निकालते हैं तो कैसा आएगा, मीठा। अलग अलग कुछ करना है क्या कि इधर से मीठा आएगा इधर से। तो इसी प्रकार हमको अपना स्वभाव के वाले से बनाना है। जैसे मैंने अपने को आत्मा समझा, मैं आत्मा हूं, तो जब आत्मा समझकर मैं कार्य व्यवहार में आ रहा हूं तो क्या होगा, आंखें भी कैसे देखेंगी, कान भी क्या सुनेगा, मुख से भी हम कैसा बोलेंगे। तो एक एक एक्टिविटी स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी, हमको अलग से इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब हम पहले लेसन को, पहले पार्ट को छोड़ते हैं। इसीलिए मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क की, उनको किसी ने बोला क्या क्या पुरुषार्थ करती हूं, तो उन्होंने कहा मैं अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ करती हूं। तो उस भाई ने कहा कि आप इतनी बड़ी बहन हो गई और इतनी महारथी और आप अभी भी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि यह ऐसा ही है जैसे कोई मान लो एमएससी या पीएचडी कर रहा हो और लिख रहा हो सब कुछ, तो आप कहो अरे आप पीएचडी कर रहे हैं और अभी भी एबीसी लिख रहे हैं इसमें अल्फाबेट, है ना। तो कुछ भी लिखेंगे, लिखना तो वही पड़ेगा ना, कि इसके बिना लिख सकते हैं कुछ। तो सबका आधार ये पहला लेसन, तो ये हमें फील करना है कि हम शांत हैं, और इस शांति को कहां फील करना है, परम धाम में। तो जितना समय मिले, इसीलिए बाबा ने यह भी कहा कि यदि कोई कहता है गॉडली स्टूडेंट, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात पढ़ाई पर ध्यान हो पूरा। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई क्या है इसमें, इसमें चारों सब्जेक्ट है, ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा है, चारों सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें बाबा क्या बताते हैं, ज्ञान कुछ अलग से तो नहीं दे रहे ना, बाबा क्यों नॉलेज दे रहे हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा ने कहा कि हमको पढ़ने की फुर्सत नहीं है, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ते क्यों हैं, बाबा हमें क्यों पढ़ाते हैं। बाबा इसीलिए हमें पढ़ाते हैं कि हमारा जीवन सहज हो जाए, सरल हो जाए, हमारे जीवन में जो कठिनाई आ रही है वो भी खत्म हो जाए, है ना। और अमृत वेले कई लोग सोचते हैं सुबह उठना पड़ता है, है ना? तो सुबह इसलिए उठना पड़ता है कि ये पढ़ाई केवल पढ़ने की नहीं है, इसको अनुभव भी करना है, अनुभव भी करना है इसे। और इसे हम ऐसी अवस्था में ही अनुभव कर सकते हैं जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग है, पावरफुल है। और बुद्धि पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल बुद्धि जो है अमृत वेले है, जो कहते हैं ना तीन प्रकार के माइंड, अचेतन, चेतन और अवचेतन। तो चेतन और चेतन और अचेतन, अचेतन भी एक अनकॉन्शियस की बात, जो इससे कोई बात सब कॉन्शियस तो है बट एक अनकॉन्शियस जो अंदर समा जाती है, तीनों ऐसे समय पर काम करती है। तो इसलिए यदि हम अमृत वेले पढ़ाई पर ध्यान देते हैं या कोई कोई चीज अनुभव करते हैं, वो आपको पूरे दिन भूलेगा नहीं। यदि केवल रात को सोने जा रहे हैं उस समय प्रैक्टिस किया तो अनुभव कब करेंगे? फिर भी बाबा कहते हैं कि रात के टाइम भी सोने जा रहे तो भी इसको अनुभव करते हुए हमें सोना है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई बाबा आपके ऊपर बर्डन नहीं दे रहे, बोझ नहीं डाल रहे कि पढ़ो सुबह उठ जाओ, नहीं, आपकी लाइफ सहज चले, आपके जीवन सहज हो जाए, सुचारू ढंग से चले, बाबा इसी में मदद करना चाहते हैं आपको, है ना, हेल्प कर रहे हैं बाबा, जीवन सहज बना रहे। तो इसलिए हमें बार बार बाबा को थैंक्स करना चाहिए कि ये बातें तो हमें कोई बताने वाला था ही नहीं, बार बार थैंक्स करें और फिर से इसको हम। तो जरूरी नहीं कि आपको सारी मुरली याद ही रहेगी दिन भर, आप कोई दो पॉइंट ले लीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगी है मुरली में आज, और उसी जो दो शब्द हैं, जो दो लाइन है, दो महावाक्य हैं, उसी को पूरे दिन आप उसी को चिंतन करते रहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि या तो बाबा की स्मृति हो, नहीं तो बाबा का ज्ञान आप स्मरण करें। और इसी को बाबा कहते हैं ना, या तो बाबा की याद में रहो या क्या कहा आज ना, स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो स्वदर्शन चक्र फिराओ अर्थात काम काज करते भी हम स्वदर्शन चक्र फिरा सकते हैं। स्वदर्शन चक्र कैसे? तो केवल उसको भी चिंतन केवल नहीं करना है, जैसे स्वदर्शन चक्र फिराना, तो कैसे फिराएं स्वदर्शन चक्र? जैसे सतयुग में चले जाए,